अष्टमी है, मगर एक्चुअली अगर हम देखें शास्त्र तो उसमें कृष्ण जयंती बोला जाता है, क्योंकि भगवान का जन्म कब हुआ, भगवान का जन्म हुआ भाद्र मास, ये भाद्र मास चल रहा है, हिंदी में भाद्र मास है, इंग्लिश में आपको पता ही है कौन सा महीना चल रहा है, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष, हर महीने के दो पक्ष होते हैं पता है ना, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, मतलब व्हाइट मंथ एंड ब्लैक मंथ, अगर अगर हिंदी में बात की, आजकल नहीं पता होता बच्चे को कि ये कैलेंडर है, ये सब पंचांग की बातें हैं। सो कृष्ण पक्ष में भाद्र मास के अष्टमी में जब रोहिणी नक्षत्र होता है, नक्षत्र भी होते हैं ना, पहले डेट से नहीं देखते, अभी पहले नक्षत्रों से देखते हैं। सो रोहिणी नक्षत्र में भगवान पैदा का जन्म जैन तो नहीं प्रकट हुए, और उस मोमेंट को जब ये सारी चीजें इकट्ठी होती है भाद्र मास से कृष्ण पक्ष के अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में, उसको बोलते हैं जयंती, उस पल को बोलते हैं जयंती। इसलिए भगवान की जन्माष्टमी को हम बोलते हैं कृष्ण जयंती, और किसी की बर्थडे पे हम जयंती नहीं लगाते, और लगाते हैं किसी की बर्थडे पे, कोई कहता है कि गांधी जयंती बोलते हैं, एंड दैट्स रॉन्ग, गलत है, वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं जयंती किसी का, कोई गांधी जी थोड़ा ना रोहिणी नक्षत्र में भाद्र मास के अष्टम वो थोड़े ना पैदा हुए हैं, उनकी क्या बर्थ डेट है हमें क्या पता, जयंती केवल भगवान के लिए लगती है बस, अगर और किसी के लिए लग रही है, वैसे पॉलिटिशियंस के लिए लगाते हैं अम्बेडकर जयंती और ऐसे लगाते रहते हैं, नहीं बट दैट्स रॉन्ग, कृष्ण जयंती केवल कृष्ण के लिए। और आज के दिन भगवान का जन्म हुआ, और जैसे ही भगवान ने जन्म लिया पूरे संसार में अपने आप फूल उगाए, अपने आप धरती अन्न देने लगी, समुद्र से हीरे मोती प्रकट हो गए, जितने भी जो ऋषि मुनि थे जो यज्ञ कर रहे थे, कंस के भय से जो जिनकी यज्ञशाला बंद हो गई थी, कंस ने बहुत तंग करके रखा था नहीं सबको, किसी को यज्ञ नहीं करने दे रहा था, सबके यज्ञ अग्नि बंद हो गई थी, अपने आप यज्ञ की अग्नि जल गई, अपने आप नदियों में कमल के फूल खिल गए, क्योंकि भगवान प्रकट हो रहे ना, पृथ्वी बहुत खुश हो गई। जब हम लोग पैदा होते हैं तो पृथ्वी बहुत दुखी हो जाती है, नहीं वी आर नॉट स्पेशल, हम तो धरती पे भार हैं सब, मैं नहीं कह रहा शास्त्र कह रहे हैं, कलयुग में जो भी पैदा होते हैं सब धरती पे भार है, कलौ शूद्र संभव, कलौ में सब लोग शूद्र हैं, शूद्र मतलब जिनका मन भगवान में नहीं लगता, स्वाभाविक रूप से हमारा मन भगवान के विरुद्ध जाता है, भगवान में लगता नहीं, हम लोग अपने बारे में सोचते रहते हैं। भगवान ने जन्म लिया, मगर जन्म भगवान का बहुत सीक्रेट था जो आपको नहीं पता, आपने रामानंद सागर और किसकी कौन सी कृष्ण लीला जो देखी होगी, बीआर चोपड़ा की देखोगी, उसमें कुछ नहीं पता लगेगा आपको क्या चल रहा है, क्योंकि उसमें सब कुछ गलत बताया है, ऑलमोस्ट सब कुछ गलत है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ था, किसी को पता है कहां हुआ था भगवान कृष्ण का जन्म, जेल में नहीं, अब भाई टीवी में तो ऐसा दिखाते हैं मगर वो गलत है, भगवान का जन्म जेल में नहीं हुआ, और भगवान का जन्म किससे हुआ, कौंती माँ उनकी देव की, ये भी गलत है, इसलिए कहते हैं कि भक्तों से सुनना चाहिए, भगवान कह रहे हैं गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवम वेत्ति तत्वतः, कृष्ण कह रहे हैं जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है, दिव्यता मतलब सीक्रेट को, और तत्वतः मतलब फिलॉसफी के साथ बिना किसी कंफ्यूजन के, वो इस जन्म इस शरीर को छोड़ के त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, क्या है उसका, पुनर्जन्म न विद्यते, वो इस शरीर को छोड़ के दोबारा से संसार में नहीं आता, इसलिए हम प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ प्रोग्राम करने की जरूरत क्या थी, मेरी जगह टीवी को लगा देते, वी आर चोपड़ा के कृष्णा सीरियल दिखा देते, हो जाता बस, मगर ऐसी बात नहीं है। सो भगवान का जन्म एक्चुअली कृष्ण का जन्म व्रज में हुआ है, भगवान का जन्म न कारागार में है ना देवकी से हुआ, कृष्णा व्रज को कभी छोड़ के नहीं जाते, ये भागवत का प्रमाण है, हरिवंश पुराण पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए, सब में लिखा है कि भगवान का जन्म यशोदा माँ के गर्भ से हुआ है, और यशोदा माँ के गर्भ से क्यों हुआ था, यशोदा मां नंद बाबा व्रज में थे ना, ये लोग कौन थे, देवकी वसुदेव कौन थे? एक्चुअली कहानी शुरू होती है देवमीड़ से। देवमीड़ एक बहुत बड़े राजा थे और देवमीड़ के पुत्र थे शूरसेन और परजन्य, दो पुत्र थे। तो ये लोग जो थे शूरसेन परजन्य, लोग बहुत, शूरसेन क्षत्रिय थे और परजन्य वैश्य। पहले पहले राजाओं के बहुत सारे वाइफ्स भी होती थी ना, तो देवमीड़ की दो वाइफ्स थी, एक क्षत्रिय कुल से थे एक वैश्य कुल से। तो क्षत्रिय कुल से जो वाइफ थी उनसे पुत्र हुए शूरसेन, और शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जो कि क्षत्रिय थे, और देवमीड़ के जो दूसरे पुत्र परजन्य उनके पुत्र हुए नंद बाबा। उनके एक्चुअली पांच पुत्र हुए थे परजन्य के, किसी को पता है कौन कौन थे? पांच पुत्र थे, उपनंद, अभिनंद, नंद, नंदन और सुनंद। पांच पुत्र, जैसे पांच पांडव है ऐसे पांच पुत्र हुए। मगर इनमें से सबसे जो इंटेलिजेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव करने वाले कौन थे? नंद बाबा थे, बीच के पुत्र। सो परजन्य ने कहा कि, परजन्य ने कहा भी मैं तो जा रहा हूं, कैन यू क्लोज दैट? परजन्य ने कहा मैं तो जा रहा हूं, अब फॉरेस्ट जाऊंगा मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए, और अब मेरे बाद कोई राज्य संभालेगा कौन? तो परजन्य के पुत्र, पांच पुत्र थे, उन्होंने कहा कि कौन राज्य संभालेगा? तो उसमें से जो नंद बाबा थे उनको चूज किया गया, और नंद बाबा को चूज करके उन्होंने कहा भेज दिया? गोकुल भेज दिया, भी तुम गोकुल में राज्य संभालो। और शूरसेन के जो पुत्र थे वसुदेव, उनको कहां रखा? मथुरा में उग्रसेन जी के साथ, वहां पे अब राजा संभालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोनों आसपास ही थे, मथुरा वृंदावन तो पास पास ही है, दोनों भाई भाई थे, कजन ब्रदर, दोनों अपना राजा संभाल रहे थे। और फिर एक दिन क्या हुआ, वसुदेव की का विवाह किससे हुआ? देवकी से, और नंद बाबा का विवाह किससे हुआ? यशोदा मां से। दोनों आराम से रह रहे थे, मगर वाइल द टाइम बीइंग क्या हुआ, कंस ने, कंस तो उग्रसेन का पुत्र था, कंस ने क्या किया, कंस ने उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया पकड़ के। अब ऐसी होता नहीं, जैसे औरंगजेब नहीं था, जहांगीर औरंगजेब ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, किंग्स होते हैं, उन्हें उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया, कंस ने किंगडम ले लिया, और वसुदेव देव, और वसुदेव देव की, चलो देव की तो बहन थी कंस की, कंस ने विवाह रचा वसुदेव से, उन दोनों का विवाह हुआ। अब जैसे एक्सप्लेनेशन हो रही थी आप सबको पता ही है, आकाशवाणी हुई, जो भी हुआ, उनको जेल में बंद कर दिया। तो छह पुत्र मर गए, छह पुत्रों को कंस ने मार दिया। सातवां पुत्र क्या हुआ, अभी बताया था, सातवें पुत्र का देवकी को लगा कि अबॉर्शन हो गया, मगर सातवां पुत्र देवकी के घर से कहां कहां ट्रांसफर हो गया? रोहिणी के घर में, और रोहिणी व्रज में थी। अब क्या हुआ, आई थिंक एनीवे, अब कृष्ण भगवान का समय आ गया जन्म लेने का। जो रोहिणी के घर में कौन था? बलराम जी, और बलराम जी का एक महीने पहले कृष्ण से जन्म हो गया। कृष्ण का जब जन्म, जब जब समय आया जन्म लेने का, तो कृष्ण भगवान ने किसके 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 गर्भ से जन्म लिया? यशोदा माँ के घर से जन्म लिया। एक्चुअली देव के घर से जन्म नहीं लिया था, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ वृंदावन में यशोदा माँ के यहाँ। और साथ ही साथ यहां पर देवकी के गर्भ से कौन, किसने जन्म लिया? देवकी के गर्भ से विष्णु ने जन्म लिया, कृष्ण ने नहीं। आपने देखा होगा, आपने सीरियल में देखा है, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, नहीं होते वहां पे? विष्णु, विष्णु ने जन्म तो नहीं होता भगवान का, भगवान प्रकट होते, हमारी तरह जन्म मृत्यु तो होती नहीं, नहीं। भगवान वहां पे, विष्णु वहां पे प्रकट हुए मथुरा में, कृष्णा प्रकट हुए यशोदा माँ के यहाँ। मगर किसी को पता नहीं लगा कि कृष्णा यशोदा माँ के यहाँ प्रकट हुए, क्योंकि जैसी यशोदा माँ की डिलीवरी हुई बेहोश हो गई। उनको उनको समझ नहीं आया कि मेरे, कि मेरा पुत्र हुआ या पुत्री हुआ, कुछ कुछ पता नहीं लगा उनको। और साथ साथ पुत्र के साथ एक पुत्री भी हुई यशोदा माँ के यहाँ, ट्विंस हुए थे साथ साथ, एक पुत्र और एक पुत्री। यशोदा माँ के कृष्ण भी हुए और एक पुत्री भी हुई वहां पर। पुत्री पता नहीं लगी यशोदा माँ को, क्योंकि जैसे पहले पुत्र हुआ, यशोदा माँ लेबर पेंस में थी, वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद एक पुत्री भी हो गई साथ साथ, और लेबर रूम में कोई भी नहीं था, नंद बाबा कोई, किसी को पता नहीं लगा कि पुत्र और पुत्री दोनों हुए। और वहां पे देवकी के विष्णु भगवान प्रकट हुए, तो विष्णु ने देवकी से बोला कि देवकी मैं तुम्हारे इसलिए प्रकट हुआ हूं क्योंकि तुमने 3 जन्म मेरी तपस्या की है। एक्चुअली देवकी और वसुदेव अपने पिछले से पिछले जन्म में प्रिश्नी और सुतपा थे, बहुत बड़े ऋषि मुनि थे प्रिश्नी और सुतपा। सो उन्होंने 12,000 वर्ष तपस्या की थी भगवान की प्राप्ति के लिए। यू कैन इमेजिन, भगवान को आसानी से तो प्राप्त नहीं होते, नहीं, और वो भी पुत्र के रूप में चाहिए उनको। 12,000 साल उन्होंने तपस्या की, और तपस्या कैसे की, उन्होंने केवल पत्तियां खा के जी रहे थे। अब उस टाइम तो एज भी लंबी थी नहीं, अब आपको 12,000 साल कैसे जिए, बट उस टाइम एज भी बहुत लंबी थी। बट ऑफकोर्स भूख तो भूख ही है, उन्होंने भूख कंट्रोल करके तपस्या की। तपस्या करना मतलब अपना मन पूरी तरह भगवान में, जैसे अभी आप तपस्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किसने व्रत किसने किया है, किसी ने किया है व्रत, काफी लोगों ने किया है। मतलब व्रत कैसा, मतलब पानी नहीं पिया गया, किसी ने निर्जल किया, अन्न नहीं खाया, अन्न नहीं खाया, नहीं, ओके गुड, ठीक है, कलयुग में अन्न छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। सो व्रत नहीं किया, नहीं, ये तपस्या है। हमने व्रत क्यों रखा है आज, क्यों नहीं खा रहे हम, क्यों नहीं खा रहे, क्या हमें शौक है क्या भूखे रहने का? हम इसलिए नहीं खा रहे कि जिससे हमारी पूरी एनर्जी कहां फोकस हो जाए, भगवान पे फोकस हो। अभी आपको भूख भी लगेगी, भूख लग रही है सबको या नहीं, नहीं लग रही, वेरी गुड, कुछ लोगों को लग रही होगी, नहीं, जो मतलब मैं जो जिसने निर्जल व्रत किया उसको प्यास भी लग रही होगी। सो तपस्या करने का मतलब क्या है कि हम लोग भूख और जब प्यास लगती है तो फिर एक चॉइस होती है कि आप किसको चूज कर रहे हो, कृष्णा को या खाने को, नहीं चॉइस होगी नहीं, अंदर से मन कहेगा यार खा ले, प्यास लग रही है पानी पी ले, और दूसरी तरफ बुद्धि कहेगी नहीं नहीं भगवान की भक्ति करो, देखो 2 घंटे तो बचे, 2 घंटे नहीं बट 1.5 घंटा बचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति करो, 1.5 घंटे बाद प्रसाद मिल जाएगा। मन कहेगा नहीं नहीं मुझे खाना है, व्रत तोड़ दो, तो आपका चॉइस है नहीं, अब आपके ऊपर आप क्या चूज करो, आप व्रत तोड़ दोगे या नहीं तोड़ोगे, है नहीं, अगर नहीं तोड़ोगे व्रत तो क्या होगा, तो भगवान के लिए दृढ़ता और बढ़ जाएगी, नहीं संकल्प बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। सो व्रत करने का मतलब ये होता है कि हम लोग कृष्ण को चूज कर रहे हैं, हम लोग अपने शरीर के बारे में ध्यान थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं, हमने पूरी जिंदगी अपने शरीर के बारे में ध्यान किया ना, और क्या किया, अपने शरीर को ही तो खिलाए जा रहे हैं पिलाए जा रहे हैं, एक दिन हम सोचते हैं चलो शरीर के बारे में छोड़ के केवल भगवान के बारे में सोचेंगे। सुतपा कृष्ण ने 12,000 साल यू कैन इमेजिन बिना खाए तपस्या की, तभी भगवान उनके बेटे के रूप में आए। तो कृष्ण सुतपा के सामने विष्णु प्रकट हुए, विष्णु ने कहा मांगो, क्या मांगते हो, तो कृष्ण जो था ऋषि मुनि थे उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, 3 बार बोल दिया। सो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, तुमने मुझे 3 बार बोला है, मैं 3 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। ये अभी कौन बोल रहा है, विष्णु बोल रहे हैं, कृष्णा नहीं। अभी मैं बता भी दूंगा विष्णु कृष्णा में थोड़ा सा अंतर है और अंतर नहीं भी है, ये भी कुछ सीक्रेट्स हैं। सो पहले जन्म में प्रिश्नी और सुतपा के पुत्र विष्णु प्रकट हुए, किस रूप में, उनका नाम क्या पड़ा, प्रिश्नी गर्भा, गर्भ मतलब वोम, प्रिश्नी गर्भा। और फिर अगले जन्म में प्रिश्नी और सुतपा किस रूप में पैदा हुए, कश्यप और अदिति, और उनके पुत्र पैदा हुए विष्णु किस रूप में, किसी को पता है क्या, कौन से किस रूप में पैदा हुए थे, वामन देव पता है ना, वामन देव की लीला हुई थी, त्रिविक्रम बलि वामन देव उस रूप में प्रकट हुए। और तीसरे जन्म में प्रिश्नी सुतपा वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हुए, और उनके पुत्र कौन हुए फिर तीसरे जन्म में, विष्णु हुए। इसलिए जब आपने सीरियल देखा होगा तो पता नहीं बी आर चोपड़ा के सीरियल में क्या दिखाया था, चतुर्भुज में प्रकट हुए थे भगवान पहले, नहीं कुछ नहीं दिखाया, सीधा बच्चे के रूप में आ गए, दैट वॉज रॉन्ग। सबसे पहले विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और देवकी से बोला विष्णु ने कि देखो देवकी मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूं क्योंकि तुमने तपस्या की थी, सब कुछ याद दिलाया। तो विष्णु ने बोला भी देखो मैं तुम्हें इसलिए याद दिला रहा हूं कि तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हें अपनी तपस्या का फल आज मिल रहा है, फिर बाद में मत बोलना कि तपस्या का फल नहीं मिला, नहीं भगवान भी सारा डेबिट क्रेडिट बराबर कर देते हैं, भगवान पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मिलिए अब तुम जो भी मांगना मांगो। तो देवकी और वसुदेव बहुत घबरा गए, उन्होंने कहा कि भगवान आप प्रकट हो गए, कंस को पता लग गया, कंस भागा भागा आएगा तो कुछ भी कर सकता है, तो आप ऐसा करिए आप छोटे बच्चे में के रूप में बदल जाइए। अब यहां पे एक सीक्रेट है, विष्णु तो यहां पे प्रकट होगा चतुर्भुज रूप में, कृष्णा वृंदावन में प्रकट हुए यशोदा माँ के। कृष्णा कृष्णा कितने कितने हाथ है उनके, द्विभुज रूप है, विष्णु चतुर्भुज रूप है। विष्णु और कृष्णा में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, मगर फिर भी अंतर है। कृष्णा से विष्णु आते हैं, आपने सुना होगा विष्णु से कृष्णा आते हैं, नहीं ऐसे ही सुना है ना, टीवी में ऐसा दिखाया, वो भी गलत दिखाया। आप टीवी देखोगे तो पक्का सब कुछ गलत, सब कुछ गलत सीखोगे। सो कृष्णा से विष्णु आते हैं, कोई अंतर नहीं है, बट फिर भी कृष्णा के पहले एक्सपेंशन कौन है, एक्सपेंड कर सकते हैं ना भगवान, तो दो कर सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। सो भगवान कृष्णा अपने आप को विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, क्यों, क्योंकि कृष्णा वृंदावन में अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, मगर विष्णु के रूप में संसार का पालन करते हैं। अब दो रूप होने चाहिए ना, मानो आप खेलेंगे कैसे, अब खेलते खेलते पालन नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है ना, मतलब एक एक हॉल का मैनेजमेंट करना इतना मुश्किल है, इस हॉल का, पूरे संसार का मैनेजमेंट यू कैन इमेजिन क्या होगा। सो विष्णु के रूप में भगवान मैनेजमेंट करते हैं, कृष्णा के रूप में भगवान अपने घर में बैठ के अपने एंजॉय करते हैं, मुरली बजाते हैं, ही एंजॉयज देयर। सो विष्णु के रूप में आप प्रकट हुए, कृष्णा के रूप में यशोदा माँ के यहाँ। मगर क्या हुआ, जैसे ही देवकी ने प्रार्थना की भगवान से कि भगवान आप बच्चे के रूप में प्रकट हो जाइए, कृष्णा वहां से गायब हो गए वृंदावन से, यशोदा माँ के वहां पे जो थे, यशोदा माँ के दो हुए थे ना, पुत्र और पुत्री, वहां से गायब होकर मथुरा आ गए। और मथुरा में आकर कृष्णा ने क्या किया, मथुरा में आ गए और विष्णु कृष्णा में प्रवेश कर गए। एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, भगवान की लीला में ना बहुत ज्यादा मर्जिंग और एक्सपेंशन बहुत कुछ चलता रहता है, नहीं इट्स नॉट इजी, एक ही व्यक्ति में तीन तीन आदमी होते हैं, इट्स नॉट इजी। अगर आप द्रौपदी देखो, द्रौपदी में द्रौपदी कौन थी पता है ना सबको, तो द्रौपदी में पांच औरतें थी इकट्ठी, आपको एक ही लग रहा है ना द्रौपदी, पांच औरतें थी उसके उनके अंदर, दुर्गा देवी थी, सची थी इंद्र की वाइफ, वायु की वाइफ थी, और वरुण वरुण देव की वाइफ थी, पांच औरतें इकट्ठी एक 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 व्यक्ति में थे। कर्ण था, कर्ण में तीन तीन लोग थे साथ में, एक कर्ण था, एक असुर भी था कर्ण के अंदर, तभी तभी कर्ण ने भगवान की बात नहीं मानी ना, कृष्ण की बात। वैसे तो कर्ण कुंती का पुत्र थे, मतलब थे तो डिवाइन ही, मगर असुर के ऐसे कर्ण का दिमाग घूम रखा था। दुर्योधन में भी दो तीन लोग अंदर घुसे पड़े थे। भगवान की लीला बहुत कॉम्प्लेक्स है, इफ़ यू थिंक, मतलब लोग सोचते हैं हमें तो पता है कृष्ण के बारे में, बट बिना डिवोटीज के आप क्या जानोगे, भगवान को क्या समझोगे। नहीं, भगवान की लीलाएं दिव्य है, दिव्य का मतलब ये होता है रहस्यमय, दिव्य का मतलब ये नहीं होता कि भगवान की लीलाओं से लाइट निकल रही है और इट्स नॉट लाइक दैट, सीक्रेट रहस्यमय है। सो भगवान कृष्णा वृंदावन से यहाँ पे आ गए और कृष्ण में विष्णु जी विष्णु प्रवेश कर गए, एक हो गए और द्विभुज रूप में देवकी के सामने प्रकट हो गए। और फिर भगवान ने बोला कि वसुदेव से कि मुझे मुझे यहां से लेकर कहां ले जाओ, वृंदावन ले जाओ, दोबारा वृंदावन ले जाओ। एक्चुअली वृंदावन से यहां पे आए और वृंदावन दोबारा दोबारा जा रहे हैं, इसीलिए कृष्ण को किसका पुत्र बोलते हैं, नहीं यशोदानंदन बोलते, नहीं बोलते हैं नंदनंदन बोलते हैं। देवकी नंदन से फेमस नहीं है कृष्णा, कृष्णा यशोदानंदन से फेमस है नहीं, नंदनंदन से फेमस है क्योंकि एक्चुअली वहीं पैदा हुए हैं। और फिर भगवान ने बोला वसुदेव को कि मुझे ले जाओ, फिर तो आपको पूरा सीन पता ही है, भगवान को वसुदेव वहां पे ले गए। मगर जब लेके गए वहां पर, तो वहां पे कृष्ण को रखा दोबारा से और जो पुत्री थी उसको उसको ले लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स जो कंफ्यूज हो रहे थे वो हो गया, उस पुत्री को लेकर फिर वो कहां गए, दोबारा से मथुरा में आ गए। और फिर उसके बाद दोबारा से जेल वेल बंद हो गया, सब कुछ वैसा का वैसा ही हो गया। और कंस को इन्फॉर्मेशन मिली कि देवकी के पुत्री पुत्री हुई है एक्चुअली। कंस आया और कंस ने देव पुत्री को पकड़ा, मगर एक्चुअली पुत्री उसके हाथ से फिसल गई और आसमान में प्रकट हुई दुर्गा के रूप में। तो वो कौन थी वो पुत्री? दुर्गा, दुर्गा देवी थी क्या? कौन थी? एक्चुअली दुर्गा देवी नहीं थी, वो योग माया थी। क्योंकि दो तरह की माया होती है, एक होती है महामाया, एक होती है योग माया। किसी को पता है उसमें अंतर क्या होता है? वैसे तो एक ही माया आप जान लो वही बहुत बड़ी बात है, अब दो दो माया करते हैं। एक ही माया नहीं, मतलब हम सब माया में ही है, नहीं है नहीं माया में है, नहीं हम सब माया में है। क्योंकि आज भगवान का जन्म हुआ है बट फिर भी हम खुश नहीं है, मतलब वैसे खुश नहीं है जैसे बड़े पार्टीज में होते हैं। सो माया में, दैट्स ऑल फिनिश। अगर माया में नहीं होते तो भूख प्यास कब की खत्म हो गई होती, आपको कुछ होश नहीं होता, आप परम आनंद में होते कि भगवान का जन्म होने वाला है एक घंटे में। यस, ईगरनेस होती। सो वैसे आइडियली पता है जन्माष्टमी के दिन सोना नहीं होता, आपको पता है? पता है सबको? पता है? So, मैं पता ही है सिर्फ नहीं। जन्माष्टमी के दिन रूल होता है कि सोना नहीं होता। अब 12 बजे तक तो हम जागे हैं, आइडियली रात को कोई नहीं सोता और पूरी रात क्या होता है, कीर्तन होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। सो कैसे सकता है कोई व्यक्ति? भक्त बड़े आनंद में पूरी रात कीर्तन करते हैं और ट्रेडिशन ऐसा ही। अगर आप अभी महाराष्ट्र में पंढरपुर जाओगे ना, पंढरपुर गए हो आप लोग महाराष्ट्र में? यहाँ पे करा दे रेडी, वहां पे तो अभी जाने को तैयार हैं सब, अभी जा रहे हैं सब, घर जाना है जल्दी। घर जाके क्या करना है पता नहीं, सोना है, टाइम वेस्ट, बट फिर भी घर जाने की। वैसे पता है बाय द वे, वैसे बड़े अजीब सी बात है, लोग पार्टीज में जाते नहीं जाते हैं, एक एक बजे आते हैं पार्टी से, है नहीं? और यहाँ पे भगवान के जन्म में जल्दी जा रहे हैं जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सो ये क्या दिखाता है, ये क्या दिखा रहा है? माया, माया ही तो है और क्या, लैक ऑफ लव फॉर कृष्णा। नहीं, सो मैं आपसे नहीं कह रहा कि पूरी रात जागना है, जिसको हम तो जागते हैं, जिसको जागना आप घर जाके जाग सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हैं हम। कोई कौन रेडी कौन है बताओ मुझे, जागने को तैयार है कोई? सीरियसली हम कर सकते हैं, हम तो जन्माष्टमी में हर जन्माष्टमी में जागते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यही जमने तो ठीक है, अभी बाद में पूछे, 12 बजे बाद पूछेंगे तुम्हारा से विलास आफ्टरवर्ड्स, नो प्रॉब्लम। सो मेरा पॉइंट ये था कि वो पुत्री योग, वो योग माया थी, महामाया नहीं थी। वो दो तरह की माया होती है, एक महामाया एक योग माया। अब वो महामाया मतलब एक महामाया एक एनर्जी है जो चारों तरफ है, जैसे आपके फोन की जो क्या कहते हैं वाइब्रेशन सिग्नल सब जगह है ना, सभी जगह है। आप यहाँ पे एंटीना लगाओ यहाँ कैच कर लेगा, वहां लगाओ वहां कैच कर लेगा, ऐसे ही एक भगवान की शक्ति सारी जगह होती है। और वो शक्तियां करती है हमें भुला देती है भगवान को। जैसे हम पैदा होते हैं घर में हमें याद रहता है भगवान के बारे में, आपको पता है? वैसे तो बच्चा 9 महीने क्यों रहता है घर में, 1 महीना क्यों नहीं रहता, 2 महीना क्यों नहीं, 14 महीने क्यों, 9 महीने क्यों रहते हैं हम? क्या होती है पता नहीं कि क्या होता है, नहीं नहीं 9 कला थोड़ा ना होती है, 16 कलाएं होती है। हम कृष्णा थोड़ा ना, वैसे भी 9 महीने क्यों रहता है बच्चा? बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, वैसे हमें भी नहीं पता, मेडिकल में भी किसी को नहीं पता 9 महीने क्यों रहता है। लोग कहते हैं डेवलपमेंट हो रही है, वो बात अलग है, बट डेवलपमेंट तो 8 महीने में भी हो सकती है, 7 महीने भी हो सकती है, वो प्रीमैच्योर बेबी होगा, बट 9 महीने क्यों है? तो शास्त्रों में लिखा है कि 9 महीने तक बच्चा प्रेयर करता रहता है भगवान से कि मैं फंस गया हूं अंदर, कोई लाइट नहीं है, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, सब बंद है ना सब, सो परेशान हो जाता बच्चा अंदर। और गर्भ में भगवान सबको दर्शन देते हैं, वो परेशान हो जाता है तो भगवान दर्शन देते हैं अंदर, और वो प्रार्थना करता है भगवान मुझे निकालिए प्लीज, यहां से निकालिए निकालिए, अब मैं निकलते ही क्या करूंगा आपकी गोविंदा गोविंदा, बस अब नहीं अब नहीं अब नहीं, अब बस यही करूंगा मैं ना, अब इस जन्म में मैं ये करने वाला हूं, बस आप निकाल दीजिए यहां से। अब ये साइंटिस्ट को नहीं पता कि ऐसा होता है, ऑफकोर्स उनको कैसे पता लगेगा, वो तो अल्ट्रासाउंड से सब थोड़ा बहुत देख लेते हैं, दैट्स ऑल। बट बच्चा सोच सकता है नहीं सोच सकता है, हिल सकता है तो सोच भी सकता है नहीं, हिल तो हिलता तो है ही पेट में। अब साइंस को नहीं पता कि सोच क्या रहा है, साइंस के पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है थॉट्स पता लगाने के लिए, साइंस के रेल्म से बियॉन्ड है नहीं थॉट्स, थॉट्स कौन मानता है साइंस, साइंस कहते हैं सब्जेक्टिव है, मगर हमें पता है कि बच्चा ऐसा सोच रहा होता है और प्रे करता है भगवान निकल के मैं आपका कीर्तन करूंगा प्लीज निकाल दीजिए, भगवान 9 महीने बाद उसको उसको बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकलते क्या होता है, बाहर निकलते कौन है, माया है, महामाया है। और महामाया जैसे ही बाहर आता है, जैसे ही बच्चा पहली बार रोएगा, पहले रोता नहीं है ना, ब्रेथ नहीं होती ना, जैसे ही सांस लेगा वैसे ही माया उसको पकड़ लेगी और भगवान को भुला देती है, अगेन फॉरगेट्स, ऐसा शास्त्र, फिर वो अपने जीवन शुरू कर देता है, इसको कहते हैं महामाया। दूसरी शक्ति होती है योग माया, योग माया क्या करती है, योग माया क्या करती है, किसी को पता है योग माया करती है, महामाया तो भगवान को भुला देती है, योग माया भगवान को नहीं, वो भी भुलाती है, दैट्स ऑल। मैं आपसे पता है ये सब क्यों पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये सब इसलिए पूछ रहा हूं अगर सीक्रेट बता दूं आपका अहंकार तोड़ने के लिए, कि आपको पता लग जाए कि आपको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूं बस और कुछ नहीं है। कि आपको पता लग जाए कि जो हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम जानते हैं कृष्ण के बारे में, एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उनके बारे में, सब भागवत में रिकॉर्डेड है ये, और ये सब सीखना होता है। तुष्यंति चरमंति चाहिए, डिस्कस करते करते डिवोटीज को बड़ा आनंद आता है नहीं। सो योग माया भी भुलाती है भगवान को, मगर उन दोनों में अंतर है, दोनों भूलने में बहुत अंतर है। अब जैसे अगर आप अभी वृंदावन चले जाओ, मान लीजिए अगर आप अभी टेलीपोर्ट हो जाओ वृंदावन में सीधा, 12 बजे जन्म हुआ कृष्ण कन्हैया की जय, सब गायब हो गए और कहां पहुंच गए, वृंदावन। तो वृंदावन में पहुंचोगे तो क्या होगा, वहां पे कौन होंगे, कृष्णा होंगे। मगर प्रॉब्लम पता है वहां पे प्रॉब्लम या अच्छी बात जो भी है, वहां पे आप जाओगे तो नंद बाबा भी होंगे, यशोदा माँ भी होंगे, नहीं भगवान के फ्रेंड्स भी होंगे। अगर आप नंद बाबा से पूछोगे ना कृष्णा कौन है, तो क्या पता क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कृष्णा भगवान है नहीं, वो बोलेंगे कृष्णा हमारे, कृष्णा मेरा पुत्र। अगर आप भगवान के फ्रेंड से पूछो कृष्णा कौन है, वो क्या कहेंगे, आप बोलो भाई हम तो पूरी भागवत पढ़ के आए हैं, ये कृष्णा कौन है, ईश्वर है, परमा कृष्णा ईश्वर है, पूरे संसार का नियंत्रण करते हैं, जन्म स्थिति प्रलय सब ये करने वाले हैं। तो भगवान के फ्रेंड्स कहेंगे, भगवान के फ्रेंड्स कहेंगे जरा यार अपना काम करो, हमारे फ्रेंड ही हैं, हमें कुछ मतलब नहीं है कि भगवान है। सो वृंदावन में ऐसे, वृंदावन में भी वो भूल गए कि कृष्णा भगवान है, मगर कृष्णा को नहीं भूले, समझे। यहां पे हम ये भी भूल गए कृष्णा भगवान है और कृष्णा को भी भूल गए। महामाया क्या करती है, सब कुछ भुला देती है। योग माया सिर्फ ये भुलाती है कि कृष्णा भगवान है, मगर कृष्णा को साथ में रखती है, कृष्ण का स्मरण आता रहेगा मगर ये भूल जाएंगे कृष्णा भगवान है। उससे फायदा है बहुत, उससे फायदा यह है कि अगर उनको याद रहेगा व्रजवासियों कृष्णा भगवान है, तो उनका प्रेम कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर वाइफ को याद रहेगा मेरे हस्बैंड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्रेम कैसे रहेगा, नहीं। घर में आके कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन, कुछ नहीं प्राइम मिनिस्टर, घर में आके तो हस्बैंड है नहीं, ऐसे ही होता है, नहीं होता है। सो घर में भगवान को लोग भगवान नहीं समझते, योग माया वहां पे सब कुछ भुला देती है, कृष्णा है। योग माया ऐसे भक्तों की सेवा करती है, उससे प्रेम और बढ़ जाता है। अगर माँ सोचेगी कि ये तो भगवान है, तो प्रेम थोड़ा ना होगा, उनको तो लगना चाहिए ना कि मेरा बच्चा है। सो जो लोग बहुत भक्ति करते हैं उनको योग माया प्रभावित करके भुलवा देती है कि भगवान है, मगर भगवान को नहीं भुलाती, भगवान से और संबंध जुड़ जाता है। महामाया हम सब कुछ भुला देगी। सो वो योग माया थी जो कंस के पास थी, और योग माया कंस के हाथ से छूटी, और योग माया ने बोला कंस को, कंस देखो ऐसा है कि अब देवकी, अब जो इसका जो आठवां पुत्र है वो कहीं और जन्म ले चुका है, और वही तुम्हारा वध करेगा। एंड शी वेंट अवे। बस तो उसके बाद सबको पता ही है क्या हुआ। उसके बाद कंस ने, आप पता है कंस ने क्या किया, कंस ने मजे की बात क्या की, कंस ने उसके बाद क्या किया पता नहीं, बीआर चोपड़ा ने क्या दिखाया होगा, बट कंस ने देवकी और वसुदेव के पैर पकड़ लिए, और कंस माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए बहन, मैंने आपके 6 पुत्र मार दिए, 7वें का अबॉर्शन हो गया, और ये तो देवताओं की वाणी भी गलत निकली, आकाशवाणी गलत निकली ना, देवताओं ने बोला था कि आठवां पुत्र मारेगा। अब ये तो बोल रही है कि कोई और कहीं पैदा हो चुका है, वो तुम्हारा तुम्हारा वध करेगा। देवताओं ने बोला था कि तुम्हारा पुत्र वध करेगा, मगर तो पुत्री हो गई। तो कंस ने कहा ये सब देवता लोग पागल हैं, इनको को पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है कुछ बोल रहा है, भ्रमित करने के लिए मुझे ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मुझे माफ कर दो प्लीज, तुम अब तुम्हें छोड़ दिया, तुम अपने महल में जाके रहो। तो कंस पता क्या दिखा रहे, तो वसुदेव चला गया अपने महल में रहने। मगर वसुदेव जी सोच रहे थे कि कंस आफ्टर ऑल कौन है, कंस है नहीं, कंस तो कंस ही है। तो असुर लोग ऐसे होते हैं, एक मिनट में क्रूर हो जाते हैं और एक मिनट में दयालु हो जाते हैं, माफी भी मांगने लगा नहीं। सो जरूरी नहीं कि असुर क्रूर ही होते हैं, एकदम से उसने देवकी से माफी मांगी, माफ कर दो, और फिर उसको छोड़ दिया। जो हर ऐसा नहीं कि दया, हर दयावान करने वाला अच्छा व्यक्ति होता है, असुर भी दया करते हैं। कंस अपने मतलब के लिए उससे माफी मांग रहा था नहीं, छोड़ दिया। मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंस ने कहा कि भाई अब मेरे को मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है, क्या करें। तो कंस ने फिर ऑर्डर किया कि जितने भी बच्चे हैं 10 दिन से कम की उम्र के सबको मार डालो। तो कंस ने किसको बुलाया फिर पता है सबको, पूतना को बुलाया। मगर उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम व्रज में जब कृष्ण भगवान का जन्म हो गया था तो नंद बाबा यशोदा मां बहुत खुश थे, फेस्टिवल्स बन रहे थे। मगर एक प्रॉब्लम थी, वहां प्रॉब्लम यह थी कि वसुदेव जी ने अपना मैसेंजर भेजा, दूत, वसुदेव जी ने दूत भेजा वृंदावन इमीजिएटली, और दूत जो था उसने नंद बाबा को बोला कि नंद बाबा कंस जो है, कंस ने ये प्लानिंग की है कि 10 दिन से कम बच्चों को मार डालेगा वो। तो नंद बाबा से बोला कंस ने, तो उस दूत ने बोला कि नंद बाबा से कि आप कुछ करिए, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कंस को पता लगे कि आपका जन्म हुआ है, और उसको पता लग ही जाएगा क्योंकि आप बहुत फेमस भी हैं और आपने इतना बड़ा फेस्टिवल भी किया ना अपने पुत्र के जन्म विधि का। तो आप ऐसा करिए, आप कंस क्या जाके टैक्स पे कीजिए, सबसे पहले आप टैक्स पे कीजिए तो वो संतुष्ट हो जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। तो नंद बाबा ने कहा चलो अच्छी बात है। नंद बाबा वहां से टैक्स पे करने आ गए कंस के यहाँ, टैक्स देते थे ना पहले, तो नंद बाबा गाय का पालन करते थे, तो वो दूध देते थे टैक्स में कंस को। तो नंद बाबा यहाँ पे आए, जब नंद बाबा यहाँ पे आ गए तो पीछे से कंस ने पूतना को व्रज में भेज दिया कि सारे 10 साल से बच्चे कम को मार दो, सॉरी 10 दिन से कम के बच्चे को। तो पूतना वहां व्रज में पहुंची और योग माया ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि पूतना सीधा कृष्ण के पास पहुंच गई। और फिर तो आपको पता ही है, पूतना ने कोशिश की भगवान को मारने की। भगवान कितने साल के थे उस टाइम, या कितने दिन के थे जब पूतना का वध किया है, कितने महीने के थे, 6 महीने कैसे, अभी 10 दिन तो 6 दिन नहीं, 3 दिन के थे, बस 3 दिन के थे, 3 दिन के भगवान थे। और उन्होंने किसका वध किया, पूतना का। शिला प्रभुपाद अपने बुक में लिख रहे हैं कि इसको कहते हैं भगवान। भगवान कोई बना नहीं जाता, आजकल लोग कहते हैं ना मैं भगवान बन गया, मैं भगवान हूं अचानक से, नहीं, भगवान मतलब 3 दिन की उम्र में ही पूतना का वध कर दिया। ये किसी ने किया हिस्ट्री में, किसी ने नहीं किया, भगवान ही होते हैं। उसके बाद तो आपको भगवान की लीला के बारे में सब कुछ पता ही है, सबने कृष्णा सीरियल तो देखा ही है, मगर शायद पता है, ये पता भी है शायद, नहीं भी पता नहीं, क्योंकि भगवान की लीला में बहुत और बहुत सारे रहस्य हैं। मगर एक रहस्य जरूर है, भगवान ने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया, किसी को पता है क्यों लिया भगवान ने जन्म, क्या कारण था, क्यों लेते हैं भगवान जन्म? 3 कारणों से लेते हैं। आपने सुना है वो श्लोक गीता का, परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी योगे योगे, ये तो सबको आता है। 3 कारण है इसमें, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का परित्राण, परित्राण मतलब परित्राण समझते, परित्राण मतलब उनको, त्राण मतलब होता है उनकी मुक्ति, साधुओं को मुक्ति देने के लिए। किससे मुक्ति देने के लिए? दुख से मुक्ति देने के लिए। तो जितने भी ऋषि मुनि थे सब भगवान पे ध्यान लगा रहे थे, और ध्यान लगाते लगाते भगवान का नाम लेते लेते उनके हृदय में इच्छा आ गई कि वो भगवान के दर्शन करें। तो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान इस धराधाम पे आए। मेन कारण ये था, क्योंकि क्योंकि अगर क्योंकि बाकी कंस को मारने के लिए तो भगवान अपने धाम से बैठ के मार सकते थे, नहीं कोई बड़ी बात थोड़े ना थी। कंस को मारने के लिए तो भगवान अपने धाम से सोच लेते कि इसका हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाता। भगवान तो अपने संकल्प से सारी सृष्टि कर देते हैं, कंस क्या कर, छोटा मोटा कंस है। कंस को मारने के लिए भगवान नहीं आए यहाँ पर, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए। अब भगवान के भगवान अपने भक्तों को दर्शन दे, उसका तो कोई सब्सिट्यूट है ही नहीं। भगवान नारद मुनि को भी भेज सकते थे कि नारद मुनि जाओ और कंस को, नारद मुनि काफी थे कंस को मारने के लिए, बिना 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 तीर कमान बिना उसके मार देते। नारद मुनि या नारायण नारायण करते कंस मर जाता, कौन सी बड़ी बात थी। मगर भगवान को आना पड़ा क्योंकि भगवान को दर्शन देना था। जब कृष्ण भगवान धराधाम पे आए तो भगवान ने सबको दर्शन दिए। भगवान स्वर्ग भी गए, जब बड़े हो गए ना स्वर्ग भी गए देवी देवताओं को दर्शन देने के लिए, नीचे के लोगों में गए बलि महाराज को दर्शन देने के लिए, और ऋषि मुनियों को सबको दर्शन दिए। जब भगवान हस्तिनापुर गए तो जब हस्तिनापुर से जब द्वारका आ रहे थे तो बीच में जितने भी ऋषि मुनि थे सबको दर्शन देते आए, भगवान ने सबको दर्शन दिया। सो परित्राण आया साधु नाम, एक कारण ये। दूसरा कारण था विनाशाय च दुष्कृताम, सेकेंडरी कारण है। भगवान ने कहा भैया भक्तों को दर्शन देने आए हैं तो हाथ लगे असुरों का वध भी कर देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है दोनों काम हो जाएंगे, मैं हुई तो फिर सफाया भी कर देते हैं लोगों का। सो भगवान ने कंस का और भी कितने असुरों का, आपको पता है वृंदावन में कितने सारे असुरों का वध किया, नहीं प्रलंबा सुर, बलराम जी, देनो का सुर, पता है ना आपको, पता है कितने कितने, सबको याद है नहीं याद है कितने कितने, बच्चों को पता होगा, शक्टासुर, बकासुर, और कौन से हैं सबको पता है, और नहीं पता, याद नहीं है कौन कौन से असुरों को वध किया है, अघासुर, सांप, स्नेक डीमन, त्रिनावर्त, वो घूमने वाला डीमन नहीं था, हाँ अग्नि, अग्नि एक फायर डीमन था उसका वध किया, कालिया, कालिया सबको पता है कालिया का वध किया। भगवान ने बहुत सारे असुरों का वध किया। कंस का वध करने के बाद भी भगवान ने कई असुरों का वध किया द्वारका में। भगवान द्वारका गए, द्वारका में दंतवक्र, शिशुपाल, और कौन था शंख चंगचूड़, हाँ चंगचूड़ तो बीच में था, जो बच गए कालिया वन का वध किया, नहीं मथुरा में। सो इतने सारे असुरों का वध किया, विनाशाय च दुष्कृता। मगर जो जो संत है ऋषि मुनि भगवान की प्रशंसा नहीं करते कि भगवान ने असुरों का वध किया, क्योंकि वो प्रशंसनीय कार्य है ही नहीं, भगवान तो चुटकी में वध कर देंगे। राम भगवान की प्रशंसा थोड़े ना करके आती कि राम भगवान ने रावण का वध किया, करोड़ों रावण राम भगवान एक चुटकी में खत्म कर सकते हैं। राम भगवान की लीला की प्रशंसा इसलिए होती है क्योंकि राम भगवान ने यहाँ पर आकर सीता देवी का लीलाएं की, लक्ष्मण अपने भक्तों का लीलाएं की, वो प्रशंसनीय है। असुरों का वध प्रशंसनीय नहीं होता, क्योंकि शिवजी और पार्वती जी में बात हो रही थी तो शिवजी ने, तो पार्वती ने पूछा शिवजी से कि शिवजी देखिए जो हनुमान है, हनुमान अयोध्या गए, उन्होंने पूरी लंका को जला डाला, जलाया नहीं था, और फिर वो वापस आ गए, और राम भगवान, राम ने रावण का वध किया, इतनी बड़ी बात हो गई। शिवजी ने कहा बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो छोटी सी बात है, इसके लिए कोई प्रशंसनीय नहीं है। राम भगवान तो वो है जो कि करोड़ों सृष्टियों को उठा के अपनी एक उंगली पे पालन करते हैं, उनके लिए कंस कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तो ये थी राम भगवान के लिए कि सीता देवी को वापस वहां से छुड़ा के लेके आए। भगवान की लीला में प्रेम बड़ा होता है, प्रेम बड़ा है नहीं, मारना काटना तो हो ही सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रेम नहीं होता बस नहीं भगवान से। दूसरा कारण था विनाशाय च दुष्कृताम, और तीसरा कारण धर्म संस्थापना अर्थ है, कौन से धर्म की स्थापना करने आए थे भगवान, कि काम करो फल की चिंता मत करो, ये धर्म है, ये छोटी सी चीज है। कौन से, कोई बता सकता है, कौन से धर्म की स्थापना करने आए भगवान, प्रेम धर्म की नहीं, सुना है प्रेम धर्म, प्रेम की स्थापना करना है। सबसे उच्च धर्म क्या है? प्रेम धर्म है। संसार में तीन तरह के धर्म होते हैं, लौकिक धर्म, वैदिक धर्म और भक्ति का धर्म। लौकिक धर्म तो हम पालन करते ही हैं, रिस्पेक्ट करो दूसरों की, और मतलब सत्य बोलो, शौचम, अहिंसा, ये सारे लौकिक धर्म है, दैट्स ओके। वैदिक धर्म होता है, वैदिक धर्म मतलब विवाह संस्कार, श्राद्ध, ये सब वैदिक धर्म है। मगर सबसे ऊपर धर्म है भक्ति धर्म। धर्म संस्थापना अर्थ है भक्ति की स्थापना करने आया कृष्ण, क्योंकि भक्ति खो गई थी। लौकिक धर्म वो सब तो पहले हो ही रहा था, बल्कि उसी में लोग अटक गए थे। सो आजकल लोग कहते भी है नहीं ऐसे, अभी वो नहीं पढ़ रहे थे वो, सॉरी एक प्रोग्राम में कहते सीए के, तो उसमें वो एक स्टूडेंट ही उठ के कह रहा था, देखिए मेरे कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही भगवान है। ठीक है, गलत नहीं है, मतलब भगवान है, भगवान तो नहीं है मगर भगवान की तरह आदर कर सकते हो माता पिता की, गलत नहीं है, लौकिक धर्म है। मगर उससे भी ऊपर धर्म है, सुप्रीम माता पिता कौन है? तुम्हें वह माता पिता, तो पिता तुम्हें वह कृष्ण है। तो कृष्ण की भक्ति करना सबसे उच्च धर्म है। भगवान कृष्ण यही स्थापना करना है, धर्म संस्थापना ही अर्थ आया संभवामी युग योगे। हर युग में भगवान आते हैं दोबारा से अपनी भक्ति के धर्म की स्थापना करने और अपने भक्तों को आनंद देने, और साथ ही साथ असुरों का विनाश कर देते हैं। इसलिए भगवान ने जन्म लिया है इस धराधाम पे। और आज के दिन भगवान हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति सीखें, भक्ति सीखें। क्योंकि आप भक्ति नहीं करोगे, भगवान से प्रेम नहीं होगा, तो इस संसार में दोबारा से हमें वापस आना पड़ेगा, दोबारा शरीर लेना पड़ेगा। और अगला शरीर किसको क्या मिलेगा किसी को नहीं पता, नहीं क्या मिलेगा। हो सकता है अगली जन्माष्टमी हम लोग हो ही ना यहाँ पर। कैन यू जस्ट क्लोज दैट गेट, व्हाई आर यू ओपन दैट गेट, थोड़ी डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। नहीं हो सकता अगली जन्माष्टमी हम कहाँ हो सकता है संसार में ना हो सकता है हम हो इस संसार में, हो सकता है पड़पड़गंज में हो मगर शायद सड़क पे हो, भौंक रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है इस साल आपकी डेथ हो जाए और दोबारा से रीइनकार्नेट हो जाओ, किस किस रूप में? कुत्ते के रूप में। फिर हम यहां नहीं आ सकते प्रोग्राम में। फिर हम नीचे हो गए और कुछ और ऐसा हो सकता है। कौन रोक रहा है? सो अल्टीमेटली हमें यही करना है। आज के जन्माष्टमी के दिन आपको याद दिलाया जा रहा है कि लाइफ का मिशन कुछ और है। जो आप कर रहे हो ना पूरे साल, वो लाइफ का मिशन नहीं है। वो करने के लिए पैदा नहीं हुए हम। वो आप कर सकते हो जो भी करना है, मगर उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाती है, जन्माष्टमी एक अवसर है जिससे हमें स्मरण आए। भगवान का बर्थडे इसलिए मनाया जाता है कि हमें स्मरण है हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है, हमें भगवान के पास जाना है, बस। बाकी आप कुछ भी कर रहे हो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, आइडियली वेस्ट ऑफ टाइम है। वेस्ट ऑफ टाइम सेंस में है कि बाकी चीजें तो बस रोटी कपड़े मकान के लिए, नहीं वो भी चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए, मगर रोटी कपड़ा मकान अगर को फ्री में मिल जाए तो बात ही क्या है, नहीं तो कौन कोई काम करेगा? अगर आपको फ्री में मिल जाए कोई काम करेगा? कोई पागल ही काम करेगा, नहीं अगर फ्री में मिल जाए। जुगाड़ है बस और कुछ नहीं है, ये संसार एक जुगाड़ है रोटी कपड़ा मकान मिलने के लिए। अल्टीमेटली हमारा एम है टाइम बचा के भगवान की भगवान को समझने की कोशिश करो। जो मैं आपको बताया ना जितने सारे सीक्रेट्स, अभी बहुत सीक्रेट्स हैं भगवान के। भगवान जब देखते हैं उसमें भी सीक्रेट है, जब चलते हैं उसमें भी सीक्रेट है। भगवान की लीलाओं में बहुत रहस्य हैं, और जैसे जैसे आप भगवान की लीलाएं समझते रहोगे ऐसे ऐसे मुक्त होते रहोगे, ऐसे ऐसे भगवान से प्रेम बढ़ता रहेगा। बस यही करना है लाइफ में, और क्या, लाइफ बनी इसलिए। मत चेत मत गता प्राणा मोदंत परस्परम, कृष्णा ने गीता में बताया कि अर्जुन क्या करना है तुम्हें, मत चित मत गता प्राणा, मेरे बारे में चर्चा करो, मेरे बारे में डिस्कशन करो, मेरे बारे में बोलो, मेरे बारे में सुनो। बोधहंता परस्परम, एक दूसरे को एनलाइटन करो, अपना अनुभव उसको बताओ और उससे अनुभव सुनो। और तुष्यंति चरमंदिचा, इस तरह अपना जीवन परम आनंद में, तुष्यंति परम संतुष्टि के साथ और परम आनंद में बिता दो, और इस जीवन के बाद तुम किसके उसके बाद इस जीवन में भी सुख और शांति होगी, और जीवन के बाद भी तुम मेरे पास वापस आ जाओगे बस। तो जन्माष्टमी के दिन आपको याद रखना है कि हमें रोज जन्माष्टमी मनानी है। ऐसा नहीं कि आज आपने जन्माष्टमी मना ली तो भूल जाओ, इसलिए नहीं जन्माष्टमी मना रहे हम, इसलिए बना रहे हैं कि जिससे अब अगले साल जो आए उसमें आपको याद रहे कि रोज हमें भगवान का स्मरण करना है जैसे हम आज कर रहे हैं। बस ये है जन्माष्टमी का मतलब है आज के दिन। अगर अब आज बना के फिर अब भूल जाओगे पूरे साल, फिर अगले साल बना लोगे फिर भूल जाओगे, तो पर्पस लॉस्ट हो गया उसका। मतलब आपने कर लिया दैट्स ओके, नहीं करने से बहुत अच्छा है बट पर्पस लॉस्ट है। किसी तरह मृत्यु से पहले हमें भगवान से प्रेम प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाना चाहिए। और प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण है कि आज के दिन आप लोग ढीले ढीले नहीं पड़े होगे। आज के वैसे अभी कीर्तन हो रहा था ना, आज के दिन तो आपको उछलना चाहिए 6-6 फुट ऊपर, नहीं इतनी खुशी होनी चाहिए आइडियली आइडियली ये थोड़ी हाइट भी कम है। आप वृंदावन सीरियसली वृंदावन आप महाराष्ट्र, मैं बता रहा था महाराष्ट्र क्या, महाराष्ट्र जाके देख लो आज के दिन क्या होता है। पूरी रात त्योहार मचता है और बहुत जम के कीर्तन करते हैं। कोई गए महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में देखा है कीर्तन कैसे करते हैं वो लोग? पंडित वृंदावन चले जाओ, वृंदावन पीपल आर वेरी हैप्पी, वहाँ का जन्म आतिशबाजियाँ होती हैं, लोग पूरी रात कीर्तन करते हैं, नींद गायब हो जाती है लोगों की क्योंकि प्रेम है भगवान से। सो प्लीज टेक दिस मैसेज आज के दिन। अभी हम लोग अभिषेक करेंगे। अभिषेक हो रहा है अरेंजमेंट यानी यही कर रहे हैं? तो प्लीज अरेंजमेंट कर दो यहाँ पर, तब तक कीर्तन करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि आज के दिन आप अपना एक मिशन बना लीजिए लाइफ का। अभी भी टाइम है लाइफ में, टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, वैसे तो कम है टाइम लाइफ में नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लान्स बहुत सारे एजेंडास होते हैं। अभी भी देर आए बस अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी भी आप अपने लाइफ का एम भगवान बना लो। रोज हम कृष्णा बुक लाए हम लोग कृष्णा बुक लाए हैं, हम सेल करने के लिए लाए हैं, आप लोग खरीद सकते हो कृष्णा किताब, उसमें भगवान की जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना सारी लीलाएं रहस्य वो सब उसमें एक्सप्लेन्ड है, कृष्णा कौन है, कैसे जन्म लिया, कहाँ लिया, वो आप रोज किताब पढ़ो कृष्ण के बारे में, सोते पढ़ लो उसमें क्या है, सोते पढ़ लो, सुबह उठ के न्यूज़पेपर की जगह पढ़ लो, धीरे धीरे भगवान से प्रेम होने लगेगा, भगवान को जानने लगोगे आप लोग, एक रात में नहीं होता। सो प्लीज डू दिस, अपनी लाइफ परफेक्ट करो और भगवान के पास वापस चले जाओ। पर इतना ही करना है, वापस पड़गंज में मत आना या मयूर विहार में, कुछ लोग मयूर विहार से भी हैं, वापस मत आना है, अब मिलेंगे तो वहां मिलेंगे वहां जाने का वीजा क्या है? वहां जाने का वीजा है लालसा, समझे? लालसा के बिना आप नहीं जा सकते। आपका मन तो करना चाहिए जाने का, अगर मन नहीं करेगा तो भगवान थोड़ा ना ले जाएंगे आपको। अगर भगवान ले जाए, आपका मन ही नहीं कर रहा भगवान ले जाए, आप तो वहां पे आतंक मचा दोगे, यार बोर हो गए क्या है ये, तो दिमाग खराब हो गया, वापस भेजो मुझे, यही मन नहीं लग रहा वहां क्या लगेगा ना, तो 24 घंटे कीर्तन होता है, 2 घंटे में मन नहीं लग रहा। सो वीजा है भगवान के धाम जाने का लालसा, भगवान के पास जाने की प्रकट लालसा। और पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट है प्रेम, भक्ति मतलब प्रेम, पासपोर्ट प्रेम है। तो पहले लालसा आएगी, आप भगवान की चर्चा करते रहोगे तो पहले लालसा आएगी, आपका मन करेगा मैं कृष्ण के पास जाऊं, आपका मन करेगा मैं संसार छोड़ दूं। आपका किसी का मन कर रहा है? आप किसी का करता है संसार छोड़ने का मन? करता है? हमारा पता है मन क्या करता है? हमारा मन करता है एक टांग यहाँ पे और एक टांग वहां पे, दोनों मिल जाए, ये भी नहीं छोड़ना चाहते हम, अब वो भी चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होता है, कुछ लोगों का ऐसे होता है कि यार यहीं पे रहे, थोड़ी बहुत भक्ति ठीक है बस काफी है, बस थोड़ा बहुत करते रहो और यहाँ पे यहीं पे रहूंगा भी मैं, तो ये छोड़ के नहीं जाऊंगा। सो या अभी मन नहीं कर रहा ना भगवान के पास जाने का, नहीं कर रहा ना, सो आप खुद ही चेक कर सकते हो, खुद ही चेक कर लो, आज चेक करो अपने आप को, चेक प्लीज जाके चेक करो, बैठ के आप देखो क्या है, क्या चल रहा है अंदर। अभी हमारा मन कर रहा है अमेरिका जाए, भगवान यही आ जाए, वैसे बात सही है। कुछ लोग की फिलोसफी पता ही होती है, कुछ लोग की फिलोसफी होती है कि मंदिर जाते हैं, ये भगवान हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, सो भगवान कहते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हारे घर ही आ जाता हूँ, मांगते रहना। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भगवान आप मंदिर में अच्छे हो, हमारे घर मत आना, प्रॉब्लम हो जाएगी, आप वहीं रहो, मैं अपने घर में रहूंगा। नोबडी वॉन्ट्स गॉड, नोबडी वॉन्ट्स कृष्णा, तभी तो भगवान प्राप्त नहीं हो रहे, वरना भगवान को प्राप्त करना शास्त्रों में लिखा है एक चुटकी का काम है, अभी हो सकते हैं अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो। भगवान की तरफ से कोई लेट नहीं हो रहा, कोई लेट नहीं है, अगर अभी हम चाहते हैं भगवान जन्म लें तो हमारे हृदय में जन्म ले लेंगे। इसलिए वृंदावन में भगवान ने केवल यशोदा माँ का जन्म नहीं लिया, अगर आप भागवत पढ़ोगे भगवान ने हर ब्रजवासी के हृदय में जन्म लिया। प्रश्न ये है, अनंत यू आर गोइंग, यू हैव टू डू कीर्तन्स नाउ। ये बाहर अंदर क्यों हो रहा है बार बार, बाय द वे, मतलब इतनी कंफ्यूजन क्यों है, मैनेजमेंट या कैन यू क्लोज दैट गेट, आई कांट, मतलब एक एक डिसाइड कर लो, या तो बाहर फ्रूट्स रख दो या कोई, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है। सो मैं क्या कह रहा था, बाय द वे आई जस्ट फॉरगॉट, क्या कह रहा था मैं, है भगवान ने हर ब्रजवासी के हृदय में जन्म लिया था, ये कृष्णा है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवत में, जहां प्रेम होता है वहां भगवान जन्म ले लेते, बस। तो जन्माष्टमी के दिन अगर आप चाहते हो भगवान यहां पे जन्म ले तो प्रेम आ जाएगा, प्रेम अगर हृदय में होगा तो जन्म ले लो, बस दैट्स ऑल। हरे कृष्णा, क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली भुवनेश, कैन यू जस्ट 2 मिनट्स, मैं नहीं फोकस कर पाता, सॉरी फॉर दैट, किसी का फोकस बहुत है तो मैं नहीं कर पाता क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस होती है। जस्ट 2 मिनट्स, गिव मी 2 मिनट्स, आई विल फिनिश नाउ। सो भगवान वहां जन्म लेते हैं जहां पे प्रेम है, बस दैट्स ऑल। और प्रेम कहाँ है, जहां पे लालसा है भगवान को प्राप्त करने की, और लालसा कहाँ है, जहां पर लालसा कैसे आती है भगवान को प्राप्त करने की, कैसे आएगी लालसा, वहां है जहां पे भगवान की कथा होती है, जहां पे भगवान को समझने का प्रयास किया जाता है, वहां पे लालसा आ जाती है। और वही हम कर रहे हैं अभी, नहीं कि जल्दी जल्दी लालसा आ जाए, और सुनना पड़ेगा आपको बार 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 बार, बाल्टी भर भर के सुनना पड़ेगा, इतने से कोई एक घंटे से कुछ नहीं होगा, 24 घंटे सुनना पड़ेगा आपको, जितना टाइम मिले सुनते रहो, बस भगवान के बारे में चर्चा करते रहो, तब प्रेम होगा। कॉमन सेंस की बात है, नहीं अगर आप गर्लफ्रेंड कह रहे हो सुनते रहो, गर्लफ्रेंड से प्रेम हो जाएगा, यही होता है ना, और क्या, यही इस संसार सेम रूल है और कुछ नहीं है, सेम रूल है, टाइम जितना स्पेंड करोगे उतना होगा। सो अभी तो हम 3 घंटे कर रहे हैं, आप रोज आप 2 घंटे पढ़ो, आप देखो अगले जन्माष्टमी आप कूद रहे होगे ऊपर, 100% आपको भी उत्साह आ जाएगा। सो प्लीज डू दैट, मेरी रिक्वेस्ट है आज आप लोग अपनी लाइफ चेंज करो, अभी आपकी लाइफ एक डायरेक्शन में जा रही है ना, डायरेक्शन चेंज कर दो आज के दिन, सीरियसली संसार के पीछे मत भागो, पैसे धन पूजा लाभ प्रतिष्ठा नेम फेम इससे कुछ नहीं मिलेगा, ये सब शास्त्र में लिखा है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा केवल शुकर एरा विष्टा, सब यूजलेस है, कुछ नहीं है, दोबारा जन्म हो जाएगा आप लोगों का, फिर बिल्ली बन के क्या आप बहुत, आप क्या कहोगे, मैं बहुत महान बिल्ली हूं, अगर महान बनने का शौक है बिल्ली बन के क्या कहोगे, कुछ नहीं कह सकते। अगर बहुत बड़े स्कॉलर हो आप, बहुत आपको नॉलेज है, और अब डॉग बन गए तो क्या होगा, तो आप प्रवचन देने की कोशिश करोगे मगर क्या निकलेगा, भावा फिर आप डॉग बन के थ्योरीज बनाते रहना कि कुछ इन्वेंशन करूं कि जिससे मेरे दोबारा से ह्यूमन वॉइस वापस आ जाओ, फिर मैं अपनी थ्योरीज प्रोपोगेट कर सकूं, देन यू कैन डू ऑल व्हाटएवर स्टफ यू वांट, बट उस टाइम कुछ भी कुछ नहीं कर सकते। सो एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. सो अब हम अभिषेक करेंगे, सब लोग अभिषेक अटेंड करें. जिस जो आपको बस दो ही चीज करनी है आज से, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, गीता पढ़ो रोज, कृष्णा बुक पढ़ो और हरे कृष्णा चैंटिंग. ये चैंटिंग नहीं है, चैंटिंग बेस्ट है. भगवान का नाम लेने से प्रेम हो जाता है. भगवान के बारे में सुनो और नाम लो, बस इतना करना है. बार बार नाम लेते रहो, हरे कृष्णा, जिसका नाम लोगे उससे प्रेम हो जाएगा, जिसका नाम ले रहे उसको समझने की कोशिश करो. बस सिंपल सिंपल रास्ता है, और क्या है. हम रेडी हैं नहीं अभिषेक के लिए? रेडी है? कहाँ हो रहा है, कहाँ है, कहाँ? नहीं मतलब, हाँ मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे.